इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और क्लीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।
मेन चीज हम स्टडी कर रहे हैं वो है मेजर प्रोफेटिक साइंस ऑफ सेकंड कमिंग। आई एम दुआ करें, खुदावंद आसमानी बाप तेरे बच्चे और तेरी बच्चियां एक बार फिर से तेरी पाक जिंदा और अजीम हजूरी में आए हैं। फर्दन फर्दन हर एक को बरकत दे और हर एक की जरूरत के मुआफिक कलाम कर, जिंदगियों को ताजगी बख्श दे और हर तरह से खुदा तेरे मौजजात, तेरी शिफा, तेरी कुदरत बड़े अजीब और गहरे तौर से जिंदगियों में काम करे। और जब तेरे लोग तेरी हजूरी में बैठे रहें तो बख्श दे कि हर तरह के बंधन टूट जाएं, क्योंकि तू यहां पर मौजूद है। बीमारियां जाती रहें क्योंकि कलाम नाजुल होने को है। दुश्मन शिकस्त खाए क्योंकि बादशाहों का बादशाह हमारे दरमियान है। जिंदगियां ताजा हो जाएं, ईमान मजबूत हो जाए क्योंकि रूह हमारे दरमियान जुम्बिश करता है। सोए खुदावन हम आज एक बार फिर से इस इबादत में तसलीस को अपने दरमियान वेलकम करते हैं। खुदा बाप बेटा और रूह कुद्दस को वेलकम करते हैं कि हर एक जान को बरकत दे और ताजगी अनायत फरमाए। मसीह यीशु के नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन। सो जो हमने स्टडी करना है वो ये है कि सेवन मेजर साइंस ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दो साइंस हमने पहली स्टडी में देख लिए और वो क्या था? नंबर वन, इसराइल का जो लैंड है वो वापस उसके हाथों में आ जाता है। सो फॉर सेंचुरीज वो ऐसे बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी, देवर नेशनलेस, देवर होमलेस, देवर लैंडलेस एंड देवर टेम्पल लेस। जितनी चीजें उनके पास थी सब की सब छीन ली गई और एक एक करके सब चीजें खुदावंद उनको वापस दे। सो दे बिकेम नेशनलेस, दे बिकेम होमलेस, दे बिकेम लैंडलेस एंड दे बिकेम टेम्पललेस। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि यरूशलेम वापस ज्यूस के हाथों में उसका आना एक मेजर प्रोफेटिक साइन की फुलफिलमेंट है 1967 की वॉर के बाद। पॉइंट हमने किया एक मुस्लिम और रशियन जो ग्रुप्स हैं इनका कोलेशन आपस में, और हिस्केल 38 में से हमने एक बड़ी डिटेल स्टडी की कैसे ये ग्रुप जो है वो डेवलप हो रहा है और उनका जो इत्तेहाद है वो बिल्डअप हो रहा है। और चौथा पॉइंट हमने स्टडी किया कि मुखालफ मसीह के आने से पहले रोमन एम्पायर जो है वो री इमर्ज होगी, दोबारा से मार्जे वजूद में आएगी। और हमने बड़ी डिटेल में लास्ट टाइम डैनियल की प्रोफेसी को और इसमें स्टडी किया जो उसने सोने की मूरत देखी। आखिरी जो तीन साइंस हैं उनमें से एक हम आज स्टडी करेंगे और खुदावंद की मर्जी हुई तो लास्ट जो टू हैं वो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। सो नंबर पांच जो प्रोफेटिक साइन है खुदावंद के आने का, दैट विल बी सिंगल रिलीजन। दुनिया की इस तरफ मूव करेगी एक मजहब की तरफ, मुकाशवा 13 बाब उसकी 8वीं आयत। नंबर छह जो प्रोफेटिक साइन होगा खुदावंद के आने का वो है सिंगल गवर्नमेंट, आलमी हुकूमत, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट भी जिसे कहा जाता है, टर्म्स बदलती रहती हैं, मकसद वही है, मुकाशवा 13:3 और सातवां और आखिरी पॉइंट जो थोड़ा टाइम लेगा हमें जो स्टडी करने में, वो है द री इमर्जेंस ऑफ बेबलॉन, बाबल का दोबारा से दुनिया की सियासत में री इमर्ज करना, मुकाशवा 18 उसकी दूसरी और तीसरी आयत। और बाइबल स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि जब आप बेबलॉन की बात करते हैं तो आप 3 किस्म के बाबल हमारे सामने हैं। नंबर 1 द एंशिएंट बेबलॉन, जिसको हम बाइबल में देखते हैं। नंबर 2 इकोनॉमिक बेबलॉन, जिसको अमेरिका को जो आजकल कहा जाता है। और नंबर 3 द स्पिरिचुअल बेबलॉन, रोम को ये नाम दिया जाता है। तो क्या ये तीनों इमर्ज होंगे या एक होगा इनमें से, या हम क्या इन तीनों की तरफ देखते रहें, ये हम आखिरी पॉइंट में स्टडी करेंगे। सो आज हम कुछ देर के लिए 5वें पॉइंट को देखेंगे, जो आमदेसानी के ताल्लुक से एक वाजिया साइन होगा खुदावन की नजदीकी का। सिंगल रिलीजन, एक मजहब। और शायद अभी हम सोचते हैं कि ये जो बातें हैं ये दूर हैं, और मे बी ऐसा होगा या नहीं होगा या कब होगा, बट द पॉइंट इज कि हर रोज हम इस फिनोमेना के नजदीक तर पहुंचते जा रहे हैं कि सिंगल गवर्नमेंट, सिंगल रिलीजन, इस किस्म की जो थॉट्स हैं, स्पेशली यूएनओ से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो नजदीक आती जा रही है। 5वें पॉइंट के ताल्लुक से हैकल का दोबारा बनाया जाना, और अगर ये हैकल बनाई जाती है तो ये तीसरी हैकल होगी। 2 हैकलें जो हैं वो इससे पहले बनाई गई, एक सुलेमान बादशाह के दौर में और एक जिसको रीबिल्ड किया गया हेरोदिस बादशाह के दौर में। ये वही हेरोदिस है जो खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में बादशाह था। सो जहां तक खुदा का और बनी इसराइल कौम का ताल्लुक है, और उनके आपस का जो रिश्ता है उसका ताल्लुक है, और उनकी जो मजहबी रसूमात है उनका ताल्लुक है, तो ज्यूस के लिए उनकी जो सबसे सेक्रेट प्लेस है, उनके लिए जो सबसे मुकद्दस जगह है, वो उनकी हैकल है। और इसलिए हैकल में 3 खाने बनाए, सेहन पाक मकाम और पाक त्रीन मकाम, होलीज ऑफ होली, जिसका उनके लिए मतलब ये था कि साल में एक दफा खुदावन की लिविंग प्रेजेंस इस जगह पे आती है, जब पासओवर की कुर्बानी ईद फसा मनाई जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग कि हम इस ज्यूइश टेंपल के बारे में बाइबल की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम देखें। तो जब हम हैकल की बात करते हैं और हैकल की दोबारा तामीर किए जाने की बात करते हैं, तो कुछ टर्म्स आप अपने जहन में रखें, कुछ वाकियात हैं, टर्म्स हैं, वो पॉइंट्स टेंपल के ताल्लुक से जो आप अपने जहन में रख सकते हैं वही है। नंबर 1 टेंपल प्रोफेसीज, हैकल के ताल्लुक से क्या नबूवतें की गई। नंबर 2 टेंपल प्रोजेक्ट, सो इसराइल की हुकूमत ने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, उनका एक गवर्नमेंट लेवल पे जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो इसको बैकअप कर रहे हैं कि तीसरी हैकल को तामीर किया जा सके, जो इस सारे काम के लिए, इस सारे पर्पस के लिए काम कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री का या उस ग्रुप का नाम है टेंपल प्रोजेक्ट। तीसरा जो इसमें अहम नाम आता है वो है टेंपल इंस्टीट्यूट। एक उन्होंने बाकायदा इंस्टीट्यूट बनाया है कि हर वो चीज, वो बर्तन, वो जरूफ, एवरीथिंग विच वॉज इन द टेंपल, उसी शेप की, साइज की रीबिल्ड की जा सके ताकि उसको टेंपल में रखा जा सके। ये टेंपल इंस्टीट्यूट उसको नाम दिया गया। और ना सिर्फ वो चीजों को और बर्तनों को और उनकी तरतीब को वो डेवलप कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, बल्कि उनका काम ट्रेनिंग देना भी है। उन लावियों को जिन्होंने खिदमत सरंजाम देनी है आने वाली टेंपल में, उनकी ट्रेनिंग का भी जो काम है वो टेंपल इंस्टीट्यूट के पास है। और इस वक्त तक जो कुछ हमें बताया जाता है वो ये है कि तकरीबन 500 के करीब जो काहिन हैं वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी के लिए तैयार कर दिए गए हैं। उनको हर तरह की ट्रेनिंग दे दी गई है, दुआएं कैसे करनी है, कुर्बानियां कैसे चढ़ानी है। 100 जो लावी हैं वो इस काम के लिए तैयार कर दिए जा चुके हैं कि जब भी ये अपॉर्चुनिटी आएगी या सिस्टम दोबारा से डेवलप होगा तो वो इसको टेक ओवर कर सके। सो बाइबल स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि जब पहली मर्तबा बाबिल के दौर में हैकल को बर्बाद किया गया या डिस्ट्रॉय किया गया और बनी इसराइल 70 साल की बाबिल की असीरी में चले गए, और जब दूसरी हैकल को 70 ईस्वी में जनरल टाइटस ने, जो वेस्पेसियन एम्परर का जो उस वक्त बादशाह था उसका बेटा था, जब उन्होंने इस हैकल को डिस्ट्रॉय किया, उसमें दोनों मर्तबा ये 9 तारीख को ये जो दोनों हैकल्स हैं ये डिस्ट्रॉय हुए। पहली हैकल 587 बीसी में डिस्ट्रॉय हुई और दूसरी मर्तबा हैकल जनरल टाइटस ने 70 बादस मसीह में उसको डिस्ट्रॉय किया। ये सारी चीजें हिस्ट्री में मौजूद हैं। और अब जिस बात पे फोकस किया जा रहा है कि तकरीबन 3 मिलेनियम्स के बाद दोबारा से या तीसरी मर्तबा इस साइकिल को फिर से एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़ा किया जा सके जहां पर सुलेमान बादशाह ने इसको फर्स्ट टाइम बनाया। सो द पॉइंट इज, जो पॉइंट हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि जब ये हैकल की तामीर शुरू होगी, एंड इट वोंट टेक मच टाइम, क्योंकि सब कुछ तैयारी के मरहल में है, बहुत सी बातें तैयार हो चुकी हैं, कुछ दिनों की बात है जिससे वो दोबारा उसको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट हमने फोकस करना है वो ये है कि पहले इस ताल्लुक से बात हो रही थी कि इसराइल के पास लैंड नहीं, 48 में हम उनके पास लैंड है, फिर उनके पास यरूशलम नहीं, तो 67 की वॉर के बाद उनके पास क्या चीज है, यरूशलम है। अब जो तीसरी प्रॉब्लम है इसराइल के पास कि उनके पास टेंपल माउंट नहीं है, वो जगह जहां पे सुलेमान ने हैकल बनाई और वो जगह जहां पर हेरोदीस ने इसको रीबिल्ड किया, और जब नेहमिया और अजरा के दौर में बाबल की ये सीरीज से जब यूज वापस आए, उन्होंने भी बहुत सारी बिल्डिंग का काम किया, लेकिन उन्होंने ज्यादातर यरूशलेम की जो दीवारें हैं उनको रीबिल्ड किया, टेंपल जो है वो प्रॉपरली हेरोदीस ने रीबिल्ड की। अब ये जो तीसरा पॉइंट है जिसे कहते हैं टेंपल माउंट, जिसको बाइबल में टर्म दी जाती है, कि वो पहाड़ वो जगह जहां पर हैकल मौजूद है वो ज्यूस के पास नहीं है। नो दे हैव द लैंड, जितनी भी लैंड है थोड़ी है ज्यादा है, दे हैव द लैंड, यरूशलम उनके पास है, लेकिन आखिरी चीज जो उनके पास नहीं है वो क्या है? टेंपल माउंट। ये जो सारा एरिया है तकरीबन 35 एकड़ पर मुश्तमिल है जहां पर हैकल और ये सब चीजें मौजूद थीं। अब ये इसराइल के पास क्यों नहीं है और ये किसके पास है? 67 की वॉर के बाद जो इसराइल का उस वक्त का डिफेंस मिनिस्टर था मोशे दयान, इस वॉर को जीतने के नेक्स्ट डे वो टेंपल माउंट पे गया और 48 में जब इनकी इंडिपेंडेंस हुई उससे पहले भी जो लोग वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी थी उस जगह पे वो जॉर्डेनियन मुस्लिम्स थे, उनके कंट्रोल में सारा टेंपल माउंट था और स्टिल आज भी जॉर्डेनियन की एक जमात है, उनकी एक इस्लामिक ग्रुप है, उनके पास सारा इख्तियार है टेंपल माउंट का, क्योंकि वहां पर इस वक्त जितनी भी इबादत गाहें हैं वो मुसलमानों की हैं। ज्यूस का जो भी वहां पे हिस्सा है वो सिर्फ एक हैकल की जो एक दीवार है उसके आउटर कोर्ट की वॉल की, सिर्फ वो दीवार वहां पर मौजूद है जिसको आज भी कहा जाता है द वेलिंग वॉल। और ज्यूस का वहां पे बजाहिर जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेलिंग वॉल है, यानी वो दीवार है हैकल की उसके सहन के हिस्से की। आज भी ज्यूस वहां पे जाते हैं एंड दे वीप एंड दे क्राई ओवर द लॉस्ट ग्लोरी, जो जलाल उन्होंने मिस कर दिया अपनी मिस्टेक्स की वजह से, वो आज भी वहां पे जाते हैं एंड दे वेल ओवर देयर। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेलिंग वॉल, रोने वाली दीवार या आहोनाला करने वाली दीवार। सो मोशे दयान वेरी नेक्स्ट डे ही वेंट ओवर देयर टू द टेंपल माउंट और वहां पे 5 मुस्लिम लीडर्स थे उनके काउंसिल के जो जॉर्डेनियन अरब्स हैं, उनसे उनकी नेगोशिएशन हुई और मोशे दयान ने कहा ओके वी गिव यू, बिकॉज ही वाज नॉट अ रिलीजियस मैन, ही वाज अ वेरी पॉलिटिकल मैन, हम आपको ये जो टेंपल माउंट है हम आपको दे देते हैं। एंड स्टिल आज भी 2010 में भी दे आर द इन चार्ज ओवर देयर, क्योंकि बाय एग्रीमेंट उन्होंने दी है। और फिर वहां पे डूम ऑफ रॉक पे जो इसराइल का झंडा लगा हुआ था मोशे दयान ने वो भी नीचे उतार दिया और किसी किस्म के भी क्रिश्चियन और ज्यूश जो रिलीजियस सेरेमनी है उसकी वहां पे पाबंदी है। ये एग्रीमेंट खुद जो है ये मोशे दयान ने किया। सो अब सिचुएशन ये है कि क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है, हैकल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट, इसलिए कि जब मुखालफी मसीह ने आना है ही विल गो थ्रू अ पीस पैक्ट, पीस एग्रीमेंट, सुलह का बंध बांधेगा, सुलह कायम करेगा और उसमें इसराइल और जो रिलेटेड वहां पे लोग होंगे उनके साथ एक पीस पैक्ट होगा और उसमें जो एक मेन कंसेशन इसराइल को दिया जाएगा वो ये है कि आप इस टेंपल को दोबारा से बना दें। और इसका मतलब है जब हैकल का उस लैंड पे बनाया जाना शुरू हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, एंटी क्राइस्ट जाहिर हो चुका है। जब तक उसने जाहिर नहीं होना जब तक उसका वक्त नहीं आना, हमारा जो कंसर्न है वो टेंपल के साथ नहीं है, क्योंकि आज चर्च को टेंपल की जरूरत नहीं है, आप सब मसीह का टेंपल हैं, खुदा का रूह आपके अंदर बसा हुआ है, खुदा की हजूरी आपकी जिंदगियों में मौजूद है, पाक रूह के वसीले से आप आज रूह कुदस का टेंपल है। ये ज्यूस की नीड है, चर्च की नहीं है, बट स्टिल इट इज अ साइन, ये एक प्रोफेटिक साइन है टेंपल, रीबिल्डिंग ऑफ टेंपल, थर्ड टेंपल का मौजूद होना, شروع ہو جانا، معاہدہ ہو جانا ٹیمپل کے بنانے کا، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مخالف مسیح ہے وہ دنیا کے سین پر آ چکا۔ سیکنڈلی، جب یہ پروسیس شروع ہوگا تو بائبل پروفیسیز کے مطابق جو آخری جنگ ہے، جو ہرمجدون کی جنگ ہے، اس کے لیے جو فوجوں کی موومنٹ ہے وہ شروع ہو جائے۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے بڑی اس کو ڈیٹیل میں دیکھا کیسے کیسے فوجیں، چار مین گروپس کون سے ہیں، اور وہ موو کریں گے اس آخری وار کے لیے۔ سو اب ہم آمد ثانی سے کتنے دور ہیں یا کتنے نزدیک ہیں؟ ایک آخری سائن جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹیمپل، دا تھرڈ ٹیمپل۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جو نالج میں نہیں، یہ ہماری نالج میں نہیں، ایک بہت سینئر چیف جو ربی ہے اس کا انٹرویو کیا گیا کہ اگر آج ہیکل آپ بنا لیتے ہیں کسی جگہ پہ تو اس کو دوبارہ سے قربانیوں کے لیے اور عبادت کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے کہ آپ اپنی جو بھی عبادات ہیں، جو بھی آپ کے سلسلے کار ہیں، احبار کی کتاب کے اس آرڈر کے مطابق آپ کو کتنا ٹائم لگے گا ساری سرمنیز کو کنٹینیو کر سکیں؟ تو چیف رہبائی نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا اور بڑی انٹرسٹنگ فگر انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جن جن چیزوں کو، جن جن برتنوں کو، جو اس میں فرنیچر ہے اور لوگ ہیں جنہوں نے اندر سرو کرنا ہے، ان کو جس جس طرح سے ہم نے انوائنٹ کرنا ہے اور کونسیکریٹ کرنا ہے اور چاند کے اور عیدوں کے حساب سے ہم نے چلنا ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمارے لیے کر، ان کے لیے تو وہی ٹیسٹمنٹ ہے ٹینک میں، جو ان کی کتاب ہے جیوز کی، ہمارے لیے مقرر کی گئی، ہمیں ٹوٹل جو ٹائم چاہیے ساری عبادات کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے، دیٹ از دا پیریڈ آف 42 months۔ کتنے مہینے ہمیں چاہیے؟ 42 مہینے۔ کتنے سال بنتے ہیں جی؟ 350. نو، اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ مخالف مسیح پیکٹ باندھے گا اسرائیل کے ساتھ اور دوسری نیشنز کے ساتھ، نو وار، اور ٹیمپل کا کام شروع ہو جائے گا، اس کی تقدیس کا کام شروع ہوگا، اور ان کو کتنا ٹائم لگے گا اس کو کرنے کے لیے؟ 350 سال، 42 months۔ اور یہ وہی پیریڈ آ جائے گا جس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے، جو ڈینیل کی کتاب میں بھی لکھا ہے اور متی کی انجیل میں بھی بتایا گیا کہ دس ول بی دا ٹائم جب اینٹی کرائسٹ خود ٹیمپل میں جائے گا اور ورشپ کو لیڈ کرے گا، عبادات کو، قربانیوں کو وہاں پہ لیڈ کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے when he will go into the temple، تو ٹیمپل جیوز کے مطابق ناپاک ہو جائے گی اور ان کا جو پیس ایگریمنٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد 3.5 سال کا دنیا میں کیا آئے گا؟ شدید مصیبتوں کا دور۔ اس کا مطلب ہے ہیکل کے بنانے کا شروع ہونا اور مخالف مسیح کے دور کا شروع ہونا جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پیریڈ۔ اور جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں، انہوں نے، ان جو مذہبی یہودی ہیں، ان کو بالکل منع کیا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اس ٹیمپل ماؤنٹ میں دعا کرنے کے لیے، آپ اس دیوار تک رہیں جو وہاں پر موجود ہیں، اور اس سے جو آگے کا علاقہ ہے جہاں پہ مسلم ان کا کنٹرول ہے یا آکیوپیشن ہے، آپ وہاں پہ نہ جائیں عبادت کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ ان سکالرز کے مطابق کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے نیچے وہ مقام تھا جس کو پاک ترین مقام کہتے ہیں، اور بڑے سٹرکٹلی وہ اپنے لوگوں سے منع کرتے ہیں جیوز کو کہ آپ اس پوائنٹ پہ جا کے آپ نے عبادت نہیں کرنی ہے، ان کیس اگر واقعہ ہی نیچے پاک ترین مقام جو ہے موجود ہے، तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है और आप उस मकाम को जो है वो आप डिफाइल कर सकते हैं। तो आप इस तरफ रहें, सेन की तरफ रहें या जो पाक मकाम है उसकी तरफ रहें, और दीवार का जो आसपास का इलाका है आप उसमें अपनी वर्शिप करते रहें, आप आगे ना जाएं। लेकिन पॉइंट हमने ये अंडरस्टैंड करना है, क्या वाकई बाइबल ये कहती है हैकल होगी या नहीं होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। टेंपल प्रोफेसीज क्या है, क्या तीसरी हैकल होनी चाहिए, बाइबल इसके बारे में सपोर्ट करती है, ये बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी, और अगर है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो तीन बातें जो हम इसमें देखते हैं, आए हम उससे पहले एक हवाला पढ़ें, लूका 21 बाब उसकी 24वीं।
और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होती रहेगी।
जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो। सो दे हैव द लैंड एंड दे हैव द कैपिटल बट दे डोंट हैव द टेंपल माउंट। टेंपल माउंट आज भी ज्यूश जो लोग हैं उनके पास नहीं है, वो मुस्लिम लोगों के पास है। तो इसका मतलब है स्टिल जहां तक यहूदियों का ताल्लुक है, अभी गैर कौमों की जो मियाद है वो पूरी नहीं हुई। जिस दिन टेंपल माउंट उनके पास होगा, ये 35 एकड़ का जो एक है, तो छोटी सी जगह लेकिन ज्यूस के लिए इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ ज्यूस के लिए बल्कि चर्च के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के आमदे सानी के हम दो स्टेप्स देखते हैं। नंबर वन, उन्होंने कहां पे वापस आना है, माउंट जैतून का पहाड़, जैतून के पहाड़ पर वापस आना है, और जैतून के पहाड़ से उन्होंने चलकर कहां पे आना है, टेंपल माउंट, माउंट ऑफ ऑलिव से उन्होंने कहां पे आना है, टेंपल माउंट पे आना है। तो नंबर वन, हैकल का होना ना सिर्फ ज्यूस के लिए उनकी ख्वाहिश है या उनकी प्रेयर है, और वो कई सदियों से ये दुआएं कर रहे हैं, बल्कि चर्च के लिए भी उसकी एक सिग्निफिकेंस है कि खुदावंद यीशु मसीह के आमदे सानी का जो हम सिनेरियो देखते हैं, उनकी जो स्टेप्स देखते हैं, नंबर वन कहां पे उन्होंने आना है, जहां से तुमने उसको जाते हुए देखा है वो वहीं पर वापस आएगा, माउंट ऑफ ऑलिव्स, और नंबर दो वहां से उन्होंने कहां पे आना है, द टेंपल माउंट। और आज भी का जो ईस्टर्न गेट है इस यरूशलेम सिटी का, तो ये तस्वर किया जाता है कि इस ईस्टर्न गेट से क्राइस्ट ने इस शहर में दाखिल होना है, और जो इन दोनों पहाड़ों का आपस में डिस्टेंस है, कोई जैतून का और उस पहाड़ का, ये कौन सा पहाड़ है जहां पे टेंपल बनाया गया था, माउंट मोराया, ये वो ही मोराया का पहाड़ है जहां पर जेनेसिस में हम देखते हैं इब्राहिम ने, बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी के लिए पेश किया, उसी माउंट पे हैकल बनाने के लिए खुदा ने डेविड और सोलोमन से कहा, माउंट मोराया इज द टेंपल माउंट। और इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, कोई जैतून में और माउंट मोराया में 1000 फीट का कदम, 1000 कदम का जो है उसमें फासला है। और यहूदी हिस्टोरियन जोसेफस ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें बताई, उन्होंने कहा कि अगर टेंपल और उसके सारे जो लॉज हैं शरीयत के ज्यूस के पास, उस पर वो काम कर रहे होंगे, एंड इफ क्राइस्ट कम्स ऑन सैटरडे, अगर वो सब्बत के दिन आ जाते हैं तो ज्यूस कल्चर के मुताबिक, उनके रूल्स के मुताबिक वो ट्रेवल नहीं कर सकते, सब्बत को, सब्बत के दिन सफर जो था वो मना तो नहीं कर सकते। लेकिन अहबार की किताब में जो उनको कंसेशन दी गई कि आप कितना सफर कर सकते हैं सब्बत के दिन अगर आपको करना पड़े, और दैट वाज व्हाट 1000 कदम। सो इफ क्राइस्ट कम ऑन अ सैबथ डे, ज्यूइश सैबथ डे, स्टिल वो माउंट ऑलिव से, जैतून के पहाड़ से माउंट मोरिया या टेंपल माउंट तक अगर उनको जाना पड़ता है तो वेरी इजिली विदाउट ब्रेकिंग द लॉ ही विल बी देयर। सो लेट्स सी मत्ती 24 बार 15 आयत।
बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज का जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे।
हाँ जी, नाउ क्राइस्ट इज मेंशनिंग व्हाट डैनियल मेंशन्ड कि जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र डैनियल नबी की मार्फत हुआ टेंपल में देखो, कहां पे खड़ा हुआ देखो, मुकद्दस मकाम होलीज ऑफ होली में, जब तुम इस शख्स को खड़े हुए देखो जिसका जिक्र डैनियल की किताब में हुआ, तो इसका मतलब है कि इस वाकया ने जब ये मत्ती की इंजील लिखी जा रही है 24वां बाब, खुदावंद यीशु मसीह अभी जमीन पर मौजूद है, क्राइस्ट इज सेइंग दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन कि हैकल मौजूद होगी और वो क्राइस्ट के जमाने में मौजूद थी, और पाक तरीन मकाम में वो जो उजाड़ने वाली मकरू चीज है वो उस हैकल के पाक तरीन मकाम में दाखिल होगी, तो उस वक्त वो हो सकती थी क्योंकि टेम्पल मौजूद थी और पाक तरीन मकाम जो है वो मौजूद था। और इवन जब 70 ईस्वी में हैकल को, दूसरी हैकल को डिस्ट्रॉय किया गया तो उस वक्त भी ये मुमकिन था क्योंकि हैकल भी मौजूद थी और पाक तरीन मकाम भी मौजूद था। लेकिन अगर यही काम मुखालफ मसीह ने करना है तो अब वो नहीं कर सकता क्योंकि हैकल मौजूद नहीं है और पाक तरीन मकाम मौजूद नहीं है। अगर इस प्रोफेसी ने पूरा होना है तो देयर मस्ट बी अ टेम्पल एंड देयर मस्ट बी अ होलीज ऑफ होली। 20 और 21 आए,
बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी।
कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये 70 की बात हो रही थी जब टाइटस जो है वो 70 में हैकल को डिस्ट्रॉय करेगा, तो दुआ करो कि वो जाड़ों के दिन ना हो और वो सब्बत का दिन ना हो। ज्यूस के लिए सब्बत बहुत सीक्रेट है, फिर तुम्हारे लिए भागना जो है, आना जाना जो है वो मुश्किल हो जाए, सफर करना मुश्किल हो जाएगा, सर्दियों में ट्रेवलिंग प्रॉब्लम्स विल बी देयर। तो कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि इसका ताल्लुक मे भी 70 ईस्वी के साथ था जब टाइटस ने हैकल को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन जैसे ही हम 21वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक कभी ना कभी होगी। ट्रिबुलेशन, मुसीबतों के दौर का जिक्र हो रहा है, ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर का जिक्र हो रहा है, मुखालफ मसीह के दौर का जिक्र हो रहा है जिसे बड़ी मुसीबत का दौर कहा गया है। 22वीं आयत,
और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे।
तो ये 70 ईस्वी की बात नहीं हो रही, ये आखिरी जमाने की बात हो रही है कि एक बड़ी मुसीबत का दौर होगा और बरगजीतों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। इसके बाद 24वीं 25वीं, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बड़े अजीब काम दिखाएंगे, और फिर वो 27वीं आयत हम पढ़ते हैं कि ये 70 ईस्वी की बात नहीं हो रही, ये आमदेसानी की बात हो रही है। जी 27वीं,
क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कोंद कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा।
तो ये किसकी इस पैराग्राफ में 15 से लेकर जो 28 तक वर्सेस हैं किसका जिक्र हो रहा है? इब्ने आदम के आने का जिक्र हो रहा है। और इस सारे पैसेज में हमें क्या मेन पॉइंट देख रहे हैं? हैकल मौजूद है और उजाड़ने वाली मकरूह चीज उसमें जिसका जिक्र डैनियल की किताब में हुआ हैकल में दाखिल होती है। So, इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए ये 70 ईस्वी की बात हो रही है या नहीं हो रही है? या ये बिल्कुल एंड टाइम की बात हो रही है? मुकाशवे में फिर इसी बात को रिपीट किया गया और मुकाशवे की किताब 90 AD में लिखी गई, 90 बाद मसीह, यानी 70 गुजर चुका था, 86 से 90 के दरमियान ये किताब लिखी गई मुकाशवा की, मुकाशवा 11। पहली दो वर्सेस, हाँ जी पढ़े जरा पहली आए।
और मुझे आशा की मानंद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदिस को और कुर्बान गाह और उस उसमें के इबादत करने वाले को नाप।
सो जॉन इज सेइंग ये अब 90 AD की बात हो रही है, 70 AD तो गुजर गया, हैकल बर्बाद हो गई और रोमन्स ने बिल्कुल उसको ईंट से ईंट बजा दी, यरूशलेम की दीवारें गिरा दी। उसके बाद जॉन देखता है चैप्टर 11 में मुझे नापने के लिए एक रूलर दिया गया, किसी ने मुझसे कहा उठकर खुदावन के मकदस और कुर्बान का, होलीज ऑफ होली, आल्टर की मेजरमेंट का। इसका मतलब है जॉन अपनी विजन में किस चीज को देख रहे हैं? हैकल को देख रहे हैं और कुर्बान गाह को देख रहे हैं और होलीज ऑफ होली को देख रहे हैं और उसको मैयर करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी आयत,
और उस सहन को जो मकदिस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है, वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे।
सो नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर ये 70 की बाद की किताब है और हैकल की बात हो रही है, दिस मींस बाइबल मुकद्दस हमें ये बता रही है कि एक और हैकल होगी। देयर मस्ट बी अ थर्ड टेम्पल, देयर नीड टू बी अ थर्ड टेम्पल जिसमें कुर्बान गाह भी है और मकदस भी है। और सेहन को जो उसके मकदस के बाहर है खारिज कर दे उसे ना नाप क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। एंड वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि इस टेंपल माउंट के अंदर जो इस वक्त होल्ड है, कंट्रोल है, वो ज्यूस का नहीं है, अरब जॉर्डेनियन मुस्लिम्स का है। सो मे बी देयर इज गोइंग टू बी अ पीस एग्रीमेंट कि एक हिस्सा, कुछ हिस्सा उस जो टेंपल माउंट का है वो ज्यूस को दे दिया जाए, सुलह के लिए एग्रीमेंट हो जाए, और कुछ हिस्सा जो है जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको दे दिया जाए क्योंकि लिखा है वो गैर कौमों को दे देगा। एज फार एज ज्यूज आर कंसर्न, गैर कौमों का मतलब है वो कौमें जो यहूदी नहीं है, दे कैन बी एनीबॉडी, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, उनके लिए सब क्या है, ये गैर कौमें हैं, जेंटाइल्स हैं, हम भी उनके लिए जेंटाइल हैं। और वो कितने अरसे के लिए उनको दे दिया गया है? 42 months, 3.5 साल। और ये वो इंटरमीडिएट पीरियड है 3.5 साल का, जो 7 साल का जो टोटल एंटी क्राइस्ट का पीरियड है वो भी कम कर दिया जाएगा, बरगजीतों की खातर वो दिन कितना 7 साल को भी कम कर दिया जाएगा, कितना कम कर दिया जाएगा ये हमें नहीं बताया गया। सो 42 months इसराइल को किस चीज के लिए चाहिए होंगे? हैकल की तकदीस के लिए, वर्शिप करने के लिए और कुर्बानियों के लिए, कॉन्सिक्रेशन के लिए, लोगों की, जगहों की, चीजों की, तेल की जिसको मसा किया जाना है, उनको सर्टन ईदों का, त्योहारों का और चांदों का जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि ना सिर्फ मत्ती की इंजील में हमें रेफरेंस मिलता है थर्ड टेंपल का या एक टेंपल का, बल्कि हमें मुकाशवा की किताब में भी टेंपल का जो जिक्र है या रेफरेंस है वो हमें मिलता है। और 27 पढ़ेंगे मत्ती 24 बाब उसकी
क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से कौन कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा।
आफ्टर दिस टेम्पल इज देयर, एंटी क्राइस्ट अपने पूरे जोबन पे होगा, एंड देयर विल बी अ वर्ल्ड वाइड परसिक्यूशन ट्रिबुलेशन। ना सिर्फ जमीन पर मुसीबतें होंगी बल्कि आसमान पर भी तरह तरह की आफतें और निशानात जो हैं वो दिखाई देंगे। और हमने पहले भी स्टडी में देखा कि वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है, हार्प टेक्नोलॉजी, ये बड़ी खतरनाक तरीके से बिल्डअप की गई है कि मौसमों को कंट्रोल किया जाए। अमेरिका ने और यूरोप ने इसमें बड़ी मेहनत की है, जहां वो चाहेंगे बारिशें ला सकते हैं, जहां वो चाहें बारिशें रोक सकते हैं, जहां वो चाहेंगे गर्मी ज्यादा कर सकते हैं। हार्प टेक्नोलॉजी, HAARP, ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई है। और इससे भी जो खतरनाक बात है वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, किसी भी मोल की जो कम्युनिकेशन है उसको जैम कर सकते हैं। आपके मोबाइल फोन्स, आपके दूसरे फोन्स, इंटरनेट, वो जब भी जिस मुल्क का भी चाहें वो इसको अपनी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जैम कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, अगर एक पाकिस्तानी के पास मोबाइल फोन नहीं है वो कितनी मुसीबत में होगा बेचारा। हमारे लिए तो लाजमी है, चीनी मिले या ना मिले, और कोई चीज हो या ना हो, चर्च हम जाए या ना जाए, मोबाइल फोन हमारे पास होना चाहिए। दो हो जाए तो कोई बात नहीं, एक से काम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारी कौम का जो है वो क्या हाल होगा। आखिरी चीज जो हम देखेंगे, हैकल के बनाने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशंस मौजूद नहीं है, बल्कि इसराइल की एक अपनी भी प्रॉब्लम है, और वो ये है, देयर मस्ट बी ए सैनहेड्रिन, एक काउंसिल का होना जरूर है। यहूदियों के मुताबिक अगर उनके पास टेंपल नहीं, दे हैव नो स्पिरिचुअल लाइफ। इसराइल की सारी जो मस्जिद वो किसके गिर्द घूमती थी, हैकल। दे हैव नो स्पिरिचुअल लाइफ, सो दे वांटेड बैक। जब से भी उनका ये डिस्पोरिया हुआ है 19 सदियों से, हर ईद फसा के दिन जो उनकी एक प्रेयर थी वो ये थी, नेक्स्ट ईयर जेरूसलम, अगले साल हम कहां पे होंगे, यरूशलेम। कितने सालों से दुआएं कर रहे हैं, 19 सदियों से, एंड दे आर देयर बैक इन जेरूसलेम। लेकिन जो यहूदी ऑर्थोडॉक्स यूज हैं, मजहबी यहूदी हैं, उन्होंने बार बार अपने लोगों को ये तालीम दी है, ये बात बताई है कि जब भी आप दुआ करें, 3 times एटलीस्ट उन्होंने कहा है, डेली खाने के टाइम पे जब आप दुआ करते हैं तो आपने ये दुआ करनी है कि आपने खुदा से, यहोवा से, कि यहोवा खुदा ये मुमकिन कर दे कि मेरी जिंदगी के अंदर अंदर हैकल दोबारा से तामीर हो जाए। फॉर सेंचुरीज दे आर प्रेइंग, और डेली 3 दफा जो मजहबी लोग हैं, जो गैर मजहबी हैं वो तो दुनिया की तरह के हैं, दे आर ऑल नॉनसेंस, लेकिन क्या दुआ कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के अंदर अंदर हैकल जो है वो दोबारा बन जाए। सो दिस इज देयर होप एंड दिस इज देयर फेथ एंड दिस इज देयर डिराइव, के उनकी ख्वाहिश है, उनकी नीड है, उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी है इट मस्ट बी देयर। So, वो इसके लिए हर एग्रीमेंट करने के लिए, हर किस्म का पीस करने के लिए वो तैयार होंगे कि उनको किसी न किसी तरह से हैकल जो है वो मिल जाए। तो उनकी नीड क्या थी, काउंसिल का होना। अनलेस देर इज अ काउंसिल ओवर देयर, सैनहेड्रिन 70 की काउंसिल जब तक इसराइल में नहीं है कोई काम नहीं हो सकता, उनका मजहबी कोई काम नहीं हो सकता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द काउंसिल। मखसूस करना है कहा इनको, काउंसिल सरदार का इनको मखसूस करना है, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया उसको मखसूस कर दिया गया है, उसका नाम भी आपको बता दिया गया, रिच मैन, रैबाई रिच मैन जो है ऑलरेडी सरदार काइन के तौर पर उसको किया जा चुका है मखसूस। ہیکل کی چیزیں مخصوص کرنا، یہ ڈکلیئر کرنا، کیونکہ جوش عبادات میں ڈیکلریشنز بہت ہیں، ان کی عبادات میں، ان کا کلام پڑھنے میں، ان کی دعاؤں میں، ان کے اور فنکشنز میں ہاتھ رکھنا اور ڈیکلریشنز جو ہیں وہ دے آر ٹو مچ اوور دیئر، اینڈ فار دیٹ پرپز ان کی کیا ضرورت ہے؟ کاؤنسل، سینہیڈرن. اور اس ریلیجس باڈی کو اب جبکہ بنا لیا گیا ہے، ان کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ وہ ساری جو پرانی رسومات ہیں ان کو پھر سے ری انسٹیٹیوٹ کریں، اور وہ فیصلہ کریں ہیکل کہاں پہ بنائی جائے گی، اس کی اوریجنل جگہ کون سی ہے، برتن کون سے ہیں. عہد کا صندوق دوبارہ سے دریافت کر لیا گیا ہے، وہ جہاں پر بھی موجود ہے، وہ جس غار میں بھی موجود ہیں، وہاں سے ان کو جرت نہیں ہے، دے ڈیئر ٹو ٹچ، ان کے نزدیک وہ بہت مقدس ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو پوری سٹڈی دے سکتا ہوں کہ عہد کا صندوق کہاں پر ہے، اس کے برتن بنا لیے گئے ہیں، بہت سے پرانے برتن بھی مل گئے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از وہ ان کو اس کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ وی ٹچ اٹ اینڈ وی ڈائی. عہد کے صندوق کو ہم ہاتھ لگائیں تو کیا ہو جائیں؟ فارغ ہو جائیں. لیکن جیوز کی ہم مدد کر سکتے ہیں، یو ٹیک کرسچنز اوور دیئر، آپ ہاتھ نہ لگائیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو اٹھا کے آپ نے جہاں بھی رکھنا ہے ہم رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہم مریں گے نہیں، ہم زندہ رہیں گے، کیونکہ یسوع مسیح وہ پاک ترین مقام ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ہم وہ پاک مقام ہیں جس میں وہ رہتا ہے. ہللویہ. بٹ دے آر ویری افریڈ. سو کونسل بنا لی گئی ہے، لابیوں میں سے 500 لابی ٹرین کر دیے گئے ہیں، بہت سے پرانے ظروف ڈھونڈ لیے گئے ہیں، عہد کا صندوق ایک جگہ پر موجود ہے، اور اس کے اندر کی چیزیں بھی پریزرڈ بہت سی جو ہیں وہ مل گئی ہیں، ہر چیز آلموسٹ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ آ چکی ہے. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایک مخالف مسیح کی ضرورت ہے جو دنیا کو کس کی طرف لے کے جائے گا؟ ایک پیس ایگریمنٹ کی طرف، ون ریلیجن ون گورنمنٹ کی طرف وہ اس دنیا کو لے کر جائے گا. اور اس میں ایک ٹرم جو آپ بار بار سنیں گے، انٹرفیتھ مذاہب کو بین المذاہب کانفرنس، بین المذاہب سمپوزیم، انٹرفیتھ کی جو ٹرم ہے، اینٹی کرائسٹ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا کہ تمام مذاہب کو جمع کیا جا سکے. اور پاکستان میں بھی جو انٹر فیتھ موومنٹ ہے وہ کافی سرگرمی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے. سو جو تیاری خدا نے کرنی تھی، خدا اپنی تیاری میں مصروف ہے، جو جیوز نے تیاری کرنی تھی، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اور جو ٹیمپل پروجیکٹ ہے وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، ان کو آپ اپنی تیاری کرنے دیں، ہیکل ہے یا نہیں ہے ہمیں اس کی چرچ کو اس کی ضرورت نہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ اپنی تیاری کریں، آپ اوپر جانے کی تیاری کریں، آپ ریپچر کی تیاری کریں، چرچ جو ہے وہ مسیح کے آنے کی تیاری کریں، کیونکہ وی نیور نو کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ واقعات جو ہیں یہ عمل پذیر ہوں گے، اور میں بھی چند سالوں میں، چند مہینوں میں، اور کوئی پتہ نہیں چند دنوں میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور آپ خداوند یسوع مسیح کو میں بھی اسی ڈیکیڈ میں، ہو سکتا ہے اسی سال میں، اپنے درمیان زمین پر واپس آتے ہوئے دیکھیں. متی 24 باب کے بعد فوراً ہم متی 25 باب پڑھتے ہیں، جس میں کس کی تمثیل ہے؟ 10 کمواریوں کی تمثیل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کریں. بہت سی ایسی ریسرچ ہیں ٹیمپل کے تعلق سے، کتابوں کے تعلق سے، برتنوں کے تعلق سے، ان کو جو مسا کیا جانے والا تیل ہے اس کے تعلق سے، کہ اس کو میڈیا پہ، پبلک پہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا، لوگوں کو زیادہ نہیں پتا ہے، بٹ آلموسٹ ایوری تھنگ از کمپلیٹڈ اینڈ ڈن وتھ، تیار ہے. खुदा अपना काम जल्द जो है वो वाइंड अप करना चाहता है। जहां तक खुदा का ताल्लुक है, चीजें तैयार हैं, हालात वाकयात आपके सामने हैं। 90s की दहाई में खुदा ने अपने खादम डॉक्टर दीना करण से कहा कि जब ये जो दुनिया है अगले मिलेनियम में दाखिल होगी तो आमदे सानी इतनी नजदीक हो जाएगी कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने ये नबूवत की। और जिन वाकयात या हालात के बारे में आप समझते हैं कि पता नहीं ये 50 सालों में भी होनी है चीजें, ये चीज पता नहीं कब बननी है, ये फलां चीज ने कब होना है, इस निशान ने कब पूरा होना है, फलां चीज ने कब पूरा होना है, जो आप सालों में सोचते हैं या डेकेड्स में समझते हैं कि ये चीजें होंगी, वो दिनों में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो द पॉइंट इज, अपने जामे धो लें, अपनी जिंदगियां तैयार कर लें, पूरे तौर से खुदावन यीशु मसीह के पास आ जाएं, हैकल बने या ना बने, फलान नबूवत पूरी हो या ना पूरी हो, फलान प्रोफेटिक साइन अभी हो गया है या नहीं हुआ, हमने उन चीजों की तरफ नहीं देखना है। तुम अपने ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को रखते रहो। एनी डे कैन बी द कमिंग डे, द लास्ट डे। आप अपनी जिंदगी ऐसे बसर करें और आप अपना दिन ऐसे वाइंड अप करें कि जब आप रात को सोएं तो आपको ये 100% यकीन हो, सुबह उठना है या नहीं उठना, मैं अपने सफर के लिए तैयार हूं, मैं अपने यीशु के लिए तैयार हूं, मैं अपनी मंजिल के लिए तैयार हूं। फलां चीज मिली है या नहीं मिली है, फलां दुआ का जवाब मिला है या नहीं मिला है, ये चीज मेरी जिंदगी में हो रही है या नहीं हो रही, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये टेंशन है, इन चीजों का आप अपनी जिंदगी से दूर कर दें। आप तैयारी का वक्त, लेट्स वन अगेन, जो मसीह का चर्च है इस बात को एक बार से फिर से सुन ले, समझ ले, जान ले, जैसे नूह के जमाने में था, जैसे लूत के जमाने में था। खुदावंद यीशु मसीह क्या लिखा है कि जिस घड़ी तुम्हें वो मान भी ना होगा, खुदावंद यीशु मसीह आ जाए। मत्ती 25वां बाब 11, 12 और 13,
वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी कि ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को।
बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। समटाइम्स जब हम परफेक्टिक साइंस दे देते हैं तो फिर लोग कहते हैं, अच्छा यार अली ये भी नहीं हुआ, अभी ये भी होने वाला है, जो देर इस टाइम। प्रोफेटिक साइंस बताने का ये मकसद नहीं है कि अभी देर है, बल्कि ये बताने का मकसद है कि इतना कुछ जो ये पूरा हो चुका है और कोई पता नहीं, तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। किसी साइन का वेट ना करें, किसी वाक्य का इंतजार ना करें, मुखालफ मसीह का इंतजार ना करें, वेट ना करें कि वो आएगा तो मैं अपनी जिंदगी ठीक करूंगा या करूंगी, किसी निशान का इंतजार ना करें, किसी वाक्य का इंतजार ना करें, किसी हुकूमत का इंतजार ना करें, किसी जलजले का इंतजार ना करें, किसी और चीज का इंतजार ना करें, सिर्फ उस आवाज का इंतजार करें जिसके बारे में बाइबल मुकदस में लिखा है कि एक फरिश्ते की बड़ी नरसिंगे और ललकार की आवाज के साथ खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर दिखाई देगा और वो जमीन पर वापस आएगा। आमीन।
Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, मतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाजन اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے. گریس اسمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائع بروئے کار لا رہی ہے، جن میں نئی کلیسائیں قائم کرنا، خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ، اور خط و خطابت کے ذریعے لے منسٹر بائبل کورس، گریس بائبل سیمینارز، گریس اسکول آف منسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسمبلیز آف پاکستان، پوسٹ باکس نمبر 10318 لاہور، پوسٹ کوڈ 54600 پاکستان.